नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम में नवनिर्वाचित 12 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। पुलिस ने नकली दवाइयों और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के 27 ठिकानों पर छापेमारी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार स्क्वाश विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय स्क्वाश टीम को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक का उद्देश्य राजधानी से सटे गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई कार्य योजनाओं की समीक्षा करना था।
इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस दौरान श्री यादव ने औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली की स्थापना के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जानकारी ली। उन्होंने इस प्रणाली की स्थापना के लिए किए जा रहे निरीक्षणों और सहायता की स्थिति का भी जायजा लिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को कोष आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मापदंडों को उन्नत की आवश्यकता पर बल दिया। श्री यादव ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को और अधिक परिष्कृत करने का भी आग्रह किया। साथ ही नगर निगमों को हरित प्रयासों के तहत गर्मी प्रतिरोधी, कम पानी की आवश्यकता वाली स्वदेशी किस्मों की झाड़ियों और घासों के रोपण के लिए वन विभागों के साथ साझेदारी करने की सलाह दी। वहीं श्री यादव ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भी भागीदारी पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने एक विशेष बैठक में नगर निगम में नव निर्वाचित 12 पार्षदों को आज शपथ दिलाई। इस दौरान महापौर ने नव निर्वाचित पार्षद को बधाई देते हुए उनके सामूहिक प्रयास और सहयोग के महत्व पर बल दिया। श्री सिंह ने कहा कि सभी को समर्पण और एकता के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे नागरिक समस्याओं का समाधान किया जा सके और दिल्ली की जनता का कल्याण सुनिश्चित हो। महापौर ने जानकारी दी कि विशेष बैठक के दौरान नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि निगम द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। राजकुमार गोयल ने आज मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री गोयल को शपथ दिलाई। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के भागीरथ पैलेस में नकली दवाइयों और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले पर सख्त कार्रवाई करते हुए 27 ठिकानों पर छापेमारी की। इन जगहों पर बिना किसी वैध लाइसेंस के ड्रग का कारोबार हो रहा था। इसके अतिरिक्त जांच में पाया गया है कि संचालक के पास कोई भी खरीद या बिक्री का वैध रिकॉर्ड नहीं मिला। वहीं बिक्री और वितरण के लिए बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों के भंडार भी मिले हैं। पुलिस ने जांच के दौरान मिले सिरप, दवाइयों, रुई और अन्य सर्जिकल सामान के लगभग 204 सैंपल बरामद किए हैं, जिनको आगे सैंपल टेस्ट और परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। पुलिस के अनुसार 10 से अधिक दवा फर्में ड्रग्स रूल्स के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई। औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई की सराहना करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार सख्त रेगुलेटरी निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बल दिया कि सरकार नकली, अवैध तथा गैर कानूनी तरीके से बेची जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए शहर भर में ऐसे सघन अभियान जारी रखेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले 11 वर्ष में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 46% की वृद्धि हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास पर श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत अब कोयले का चौथा सबसे बड़ा शोधन केंद्र है। उन्होंने पिछले वर्ष 1 अरब टन से अधिक कोयले के उत्पादन और आयात में 8% की कमी का उल्लेख किया। श्री गोयल ने बताया कि पवन ऊर्जा क्षमता अब बढ़कर 53 गीगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार का पूरा ध्यान परिणामों पर केंद्रित रहा है और पिछले 11 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।
11 वर्षों में बदलाव कितना बड़ा हुआ है, और ऊर्जा एक क्षेत्र ऐसा है जो एक सूत्र में आपको बता सकता है, मोदी जी की सोच गरीबों तक विकास पहुंचा है, रोजगार के नए अवसर मिले, स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा योजना का सफलता देखिए, स्वनिधि योजना की सफलता देखिए, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया की सफलता देखिए।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर जोर दिया। इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता हासिल करना और जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी लाना है। श्री गोयल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर भी बात की, जिसके तहत लगभग 20 लाख घरों में छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अतिरिक्त बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा में नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत टैरिफ निगरानी इकाई को और मजबूत करेगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने बताया कि घरेलू मार्गों के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के किराए की भी निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किरायों में बढ़ोतरी पर मंत्रालय सभी जरूरी कदम उठा रहा है।
जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे डीजीसीए में है, उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट हम मॉनिटर कर रहे हैं, इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है।
दिल्ली हवाई अड्डे पर रनवे की दृश्यता में सुधार हुआ है और उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। हालांकि उड़ानों के प्रस्थान और आवागमन पर कुछ असर पड़ सकता है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को परामर्श जारी कर ताजा जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहने का आग्रह किया है। इसमें बताया गया है कि कर्मचारी टर्मिनल के विभिन्न आवागमन क्षेत्रों में यात्रियों की सहायता के लिए मौजूद हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने आज बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के वसुंधरा इनक्लेव सोसाइटी में 18 और 1024 पॉकेट ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में 19 दिसंबर तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी जमा कर ले। वहीं पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 उपलब्ध रहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बदलती जीवन शैली के बीच हड्डियों के स्वास्थ्य की देखभाल पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता भाग लेंगी। श्रोता हड्डियों से संबंधित बीमारियों के लक्षणों के बारे में और प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 0112331048 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल जी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और राजनीतिक कौशल से 550 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर अखंड भारत की मजबूत नींव रखी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने और किसानों के अधिकारों के लिए उनके अथक प्रयास राष्ट्र के लिए अमूल्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सशक्त भारत के निर्माण के लिए पटेल जी का निस्वार्थ समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल रहे संत डॉक्टर राम विलास वेदांती के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लंबे और कठिन संघर्ष में उनका अद्वितीय त्याग और प्रभु राम के प्रति अटूट समर्पण सदैव स्मृतियों में जीवंत रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पहली बार स्क्वाश विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचने पर भारतीय स्क्वाश टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों वाली इस टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के लिए गौरव का क्षण है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्क्वाश खिलाड़ियों ने अपने समर्पण, अनुशासन और निष्ठा के साथ देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि वैश्विक खेल मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। वहीं श्रीमती गुप्ता ने स्क्वाश टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये उल्लेखनीय उपलब्धि अनुशासन, दृढ़ संकल्प और उच्चतम स्तर की प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय उत्कृष्टता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जीत देश भर के अनगिनत युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और भारत का गौरवपूर्वक प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने स्क्वाश विश्व कप 2025 का खिताब पहली बार 3-0 की ऐतिहासिक जीत के साथ अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय स्क्वाश के लिए ये वाकई एक विशेष पल है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी GOAT इंडिया टूर के अंतर्गत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली तथा जिला क्रिकेट संघ DTCA के अध्यक्ष रोहन जेटली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ICC चेयरमैन जय शाह ने उन्हें भारत और अमेरिका के बीच पुरुष T20 विश्व कप 2026 के मुकाबले की टिकट, फ्रेम किया हुआ क्रिकेट बैट और टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को ICC ने नवम्बर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। शेफाली ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 78 गेंद पर 87 रन बनाए थे। महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा स्कोर है। और इस बीच भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने आज 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीते। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर ने सीनियर और जूनियर महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स स्पर्धा अपने नाम किया। फाइनल में मनु भाकर ने 36 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया, जबकि दिव्या ने 32 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। वहीं अंजलि चौधरी ने 28 टारगेट हिट करके कांस्य पदक जीता। और अब मौसम की बात करते हैं। राजधानी में आज सुबह के समय धुंध छाई रही और शाम के समय सामान्य से अधिक ठंड महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 413 दर्ज किया गया, जो वायु की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली नगर निगम में नवनिर्वाचित 12 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। पुलिस ने नकली दवाइयों और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के 27 ठिकानों पर छापेमारी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार स्क्वाश विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय स्क्वाश टीम को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।